दार्व के कुलीन के हृदय पर पांव रखकर छीनी हुई सत स्वर्ण मुद्रा अभी सूर विक्र की बसी में समाप्त नहीं हुई। विक्र ने दार्व की भय से कांपती महाकुलीन सुंदरियों का भोग उनके रजत पर्यकों पर किया है। कुलीन सुंदरी बोलो, तुम्हारे सहवास का क्या मूल्य है? यदि तुम वसुमाला और मल्लिका भी हो तो स्वर्ण का दंड तुम्हारे द्वार पर खड़े प्रतिहारियों के खग को नत कर देगा। तुम स्वयं उसके सम्मुख विनीत प्रार्थनी हो जाओगी। सुंदरी, मेरे मुख से मारे की कटुगंध नहीं, द्राक्षी की मधुर सुवास सूंघो, जो तुम्हारे प्रसाधन उपचार से सुवासित शरीर के श्वेत के समान प्रिय है। उन्माद में डगमगाते दूसरे मताल ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर किलकारी मारी, हाय हाय कुलीन सुंदरी, और ओठों से रस लेने का शब्द कर भूमि पर पाँव पटकने लगा। आओ सुंदरी, सुख दो और धन लो, विक्र ने भुजा फैलाकर निमंत्रण दिया। धाता ने भयकंपित स्वर से पुनः पुकारा, दृष्ट माताल, कुलीन वंश की कन्या के अपमान का फल अत्यंत कठोर होगा। विक्र के दाहिनी ओर खड़े स्थिल पद्मताल ने आगे बढ़कर अट्ठास से चित्कार किया, कुलीन नारी, और दूसरे माताल साथी की भांति शब्द का रस जीवा से ओठों पर अनुभव किया। उन्माद से विलंबित स्वर में उसने दोहराया, युथुप विक्र, कुलीन नारी का लोग लोगात, और हृदय का मद कुतुब पुनः मुख से लगा लिया। दिव्या का धैर्य स्थिर हो गया, मन का आतंक वश कर उसने अपने स्वर को कठोर कर प्रत्राणा की, सैनिकों, इस धृष्टता का फल दारुण होगा। मदमत विक्र सिवका की ओर बढ़ा, हिंसक पशु की भांति गुर्रा कर हाथ का कुतुब पथ पर पटक कर उसने उत्तर दिया, नारी का यह अहंकार, क्या मूल्य है तेरे अभिमान का? तुझे अहंकार है कुलीन पुरुष की भोग्य होने का? युथपति विक्र ने दार्व में कुलीन का सिर अपने पथ से कुचला है, उसने अपने भारी यवन जूता शिला मंडित पथ पर पटका। तुझे रजत के पर्यक और कांस्य के विस्तरों पर कुलीन धनी पुरुषों द्वारा भोगी जाने का गर्व है? तेरे भांति अनेक स्वीकारोही अभिमानी कामनियों का मर्दन विक्र ने अपने अंगों से किया। दांत किटकिटाकर कमर से बोझल बसी खींचकर अधर में दिखाकर विक्र ने ऊंचे स्वर में पुकारा, मैं तेरे अहंकार का मूल्य दे सकता हूँ। विक्र ने भुजा घुमाकर अपने साथी को आज्ञा दी, वारण, स्वीकारोही कुलीन सुंदरी को यूथपति विक्र की सेवा में उपस्थित करो। स्वीका पर बैठित दिव्या थर थर कांप रही थी। धाता दोनों हाथ उठाकर स्वीका के सम्मुख खड़ी होकर चित्कार उठी, आताताई आताताई, नागरिको रक्षा करो। वाहकों को उसने कुमारी की रक्षा के लिए ललकारा, वाहक उतावली में स्वीका पथ पर टिकाकर आगे बढ़े। सहसा समीप ही शिला मंडित पथ पर द्रुत वेग से दौड़ आते अश्वों की टाप सुनाई दी। सम्मुख पथ के मोड़ पर शीघ्रता से बढ़ते प्रकाश की झलक दिखाई दी। क्षण भर पश्चात ही एक दीप दंडधारी अश्वारोही सहस्त्र दास सहित आता दिखाई दिया। धाता पुकार उठी, आर्य रक्षा, आताताई से धर्मत्स की पपुत्री की रक्षा। कुलीन युवक ने अश्व की वाकुरा खींच ली, दूसरे अश्व भी सहसा रुक गए, तीनों माताल स्तंभित रह गए। कट से लटकी खड़ खींचकर अपने अश्व को स्वीका के सम्मुख कर युवक ने कहा, महासामंत सवार्थ वर्मा का पुत्र अजेय वर्मा कुमारी की सेवा में प्रस्तुत है, इस असमय इस अशोभन स्थान में भद्रे का आगमन किस प्रकार हुआ? आदर से मस्तक झुकाकर धाता ने उत्तर दिया, आर्य कुमारी एक सखी के निमंत्रण से लौट रही हैं। राजपथ के जमघट में विलंब से बचने के लिए स्वीका निराले पथ से जा रही थी, माताल आताताइयों ने मार्ग अवरोध कर लिया। अजय वर्मा ने क्रोध से मातालों की ओर देखा, विक्र के दोनों साथी भय से कांप रहे थे। विक्र भाग जाने की चेष्टा में अश्वारोही सहस्त्रदास द्वारा रोक लिया गया। विक्र का सैनिक भेष देखकर अजय वर्मा क्रोध से ऊंट काट कर बोला, विजयी बालाधिकृत दास प्रतिसेन के सैनिक के अतिरिक्त यह दुस्साहस कौन करेगा? तीनों मतालों को बंदी बनाकर राजपुरुषों को सौंपने का आदेश सहस्त्र दास को देकर अजय वर्मा ने दीप दंडधारी दास को महापंडित धर्मत्स के प्रसाद का मार्ग दिखाने का आदेश दिया। वह स्वयं शिवका के पार्श में चला। दिव्या के प्रति सहानुभूति में वह अपना असंतोष प्रकट कर रहा था। अकुलीनों का उत्साह बढ़ाकर उन्हें कुलीनों का पद देने का परिणाम अभी और क्या होगा। संभवतः हमें अपने प्रसादों से निकाले जाकर उनके कंधों से कंधा मिलाकर पर्णों में अपना अस्तित्व भी खो देना होगा। शिवका के कुछ पद आगे बढ़ने पर दिव्या ने निवेदन किया, आर्य की अत्यंत सामयिक कृपा के लिए अनेक धन्यवाद। आर्य कष्ट न करें, देवी वसुमित्रा को दिए वचन के अनुसार कुछ क्षण के लिए मुझे उनके चतुस्साल में उपस्थित होना आवश्यक है। इस कारण भी इस मार्ग का अवलंबन किया था। देवी वसुमित्रा के प्रसाद से दीप दंड का प्रबंध सुविधा से हो सकेगा और मार्ग भी प्रशस्त है। धाता ने विस्मय से दिव्या की ओर देखा, परंतु उसकी बात में योग दिया। देवी वसुमित्रा के प्रसाद में कुमारी की प्रतीक्षा है। आर्य को दासी का प्रणाम। अजय वर्मा के आदेश से दीप दंडधारी दास ने मार्ग बदल दिया। वसुमित्रा के प्रसाद के अनेक दीपों से प्रकाशित सिंहद्वार के तोरण के नीचे पहुंचकर आर्य अजय वर्मा कुमारी को नमस्कार आदर से ग्रहण कर अपने मार्ग पर विदा हो गया। दिव्या ने वसुमित्र के सिंहद्वार पर शिविका छोड़कर उद्यान में प्रवेश किया। धाता स्वामिनी का अभिप्राय न समझकर मूक तत्परता में पीछे पीछे चली। द्वार से चतुस्साल की ओर न जाकर दिव्या अंधकारमय उद्यान में एक घने कुंज में जाकर पृथ्वी पर बैठ गई। धाता को सम्मुख देखकर उसने संबोधन किया, अम्मा तुम जाओ, शिवका सहित प्रसाद लौट जाओ, मेरे लिए प्रसाद में स्थान नहीं, आर्य पृथ्वसेन के यहाँ भी स्थान नहीं, मैं वंचिता हूँ, किं कर्तव्य विमूढ़ हूँ, नहीं जानती कहाँ स्थान पाऊंगी, पथ पर वीथियों में वन के वृक्षों के नीचे अथवा अपागा के जल में। अम्मा जाओ, तुमने संतान की भांति अपने स्तन से मेरा पालन किया। माता पुत्री को पति के लिए घर के लिए विदा देती है, वैसे ही मुझे विदा दो, मेरे पति ने मेरी वंचना की है, अब प्रपितामह और किसी के यहाँ मेरे लिए स्थान नहीं, कह नहीं सकती कहाँ जाऊँगी। धाता के नेत्रों से आंसू उमड़ पड़े। अपने स्तन मुख में देखकर हृदय पर रखकर पली दिव्या स्वामिनी होकर भी उस असहाय अवस्था में उसकी अपनी बेटी के समान हृदय का अंग हो उठी। समीप ही भूमि पर बैठकर दिव्या को अंक में लेकर धाता ने अश्रु अवरुद्ध कंठ से कहा, बच्चे क्या कह रही हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ जाऊं, तुम कहाँ जाओगी। दिव्या के नेत्र सूखे रहे, स्वर भी संयत रहा, अम्मा विवाह बिना गर्भ धारण कर मैं तात के प्रसाद में किस प्रकार रह सकती हूँ, जिसका गर्भ है उसी के यहाँ स्थान नहीं तो कहाँ स्थान होगा, जहाँ मेरा गर्भ है वहीं मैं हूँ, कहीं भी स्थान न पाने पर दासी कर्म कर अपने आप को विक्री कर उदर के प्राणी की रक्षा करूँगी, देव की जो इच्छा हो। क्या कहती हो बच्चे, अपने आंसुओं से दिव्या के केस भिगोकर उसने बलपूर्वक आलिंगन में समेटकर धाता ने कहा, तुम पथवीथियों में जीवन बिताओगी, तुम दास्य करोगी, मेरे माणिक जिसने हाथ में कभी काष्ठ स्पर्श नहीं किया, चरण से रज का स्पर्श नहीं किया, घाम नहीं देखा, शीत नहीं देखा, मेरा माणिक तुम वीथी में निर्जर वन में जीवन बिताओगी। तात आता ताइयों और निष्ठुर हिंसकों से पूर्ण इस समाज में तुम अकेली। अम्मा उपाय क्या है, दिव्या ने पूछा, किससे भय है, भय किससे नहीं है, माताल विक्र से भय है, पृथ्वीसेन से भय नहीं किया था, क्या हुआ, विक्र से भय किस कारण, नारी है क्या, माताल विक्र ठीक ही कहता है अम्मा, कठोर धीर रुद्रधीर कोमल पृथ्वीसेन अभद्र मारीस और माताल विक्र नारी के लिए सब समान है, जो भोग्या बनने के लिए उत्पन्न हुई है उसके लिए अत्यंत शरण कहाँ, उसे सब भोगेंगे ही, भय किससे नहीं, क्या तात से भय नहीं, महापृथ्वी से भय नहीं, वे मुझे आर्य रुद्रधीर को देना चाहते थे। मैंने स्वेच्छा से पृथ्वीसेन को आत्मसमर्पण किया, उसका फल यह है। अम्मा क्या उपाय है? धाता कुछ उत्तर न देकर दिव्या को अपने उमड़ते हृदय से लगाए मौन रोती रही। कंठ के आंसू निकलकर क्रंदन से विकृत स्वर से उसने कहा, बच्चे स्वामिनी, हिंसा से पूर्ण इस संसार में तुम अकेली कैसे जाने दूं? मेरे माणिक दासी तेरे साथ रहेगी। कोमलांगी कन्या के लिए प्रसव कठिन समय होता है। बच्चे, दास की गति स्वामी के साथ है, मैं तेरी ही दासी हूँ। विपत्ति में तुझे छोड़कर परलोक के लिए किस प्रकार पातक संचय करूँ? मैंने जीवन और समाज देखा है, सुख दुख देखा है, स्त्री पुरुष देखे हैं, छल छंद देखा है। मेरी अबोध स्वामी, तेरी माता ने तुझे मुझे सौंपा था। तेरे कष्ट में तेरी दासी अम्मा तुझे आंचल की ओट लिए तेरे साथ रहेगी। दिव्या और अम्मा वासमित्रा के उद्यान के अंधेरे में 2 घड़ी मौन बैठी रहीं। चतुस्साल में समाज विसर्जन होने के समय दिव्या और धात्री सिंह द्वार पर प्रतीक्षा करते सीविका वाहकों को छोड़कर उद्यान के पृष्ठ द्वार से निकल पुनः नगर की अधियारी वीथियों में फिरने लगी। शरीर के भार के कारण दिव्या के लिए निरंतर चलते जाना दुर्भर था। उसने नगर के किसी पंथशाला में आकर विश्राम करने की इच्छा प्रकट की। धाता ने समझाया, बच्चे पुरुष साथ न होने से पंथशाला आपत्तिजनक है, वहाँ राजपुरुषों की शंका का उत्तर देना होगा। सीविका वाहकों के रिक्त सीविका लेकर प्रसाद लौटने पर तुरंत खोज होगी। रात्रि का दूसरा प्रहर समाप्त हो रहा था। सब ओर अंधकार था, केवल पथ के समीपवर्ती घरों के गावाक्षों और आलिंदों में जहाँ तहाँ प्रकाश पड़ रहा था। प्रकाश था तो मध्य के प्रणयों और वेश्याओं के घरों के सम्मुख। दिव्या और धाता को प्रकाश में पहचान जाने का भय था, अंधकार में भी अज्ञात का भय था, पुरुष का भय था। इन समय पथों पर केवल पुरुष ही थे, स्त्रियां न थी। स्त्रियां थी तो केवल वैश्याएं, पुरुष भी ऐसे जिनसे स्त्रियां आशंकित होती। वीथी या पथ के किसी स्थान पर बैठना या खड़े होना संदेह का कारण था। धाता और दिव्या शिथिल पदों से इस वीथी से उस वीथी और उस पथ से इस पथ पर घूम रही थी। भयंकर शीत में भी अत्यंत श्रांति के कारण दिव्या के वस्त्रों के नीचे स्वेद की धारा बह रही थी। कभी वायु सम्मुख होने पर वह ठिठुर कर कांपने लगती। वह आश्रय खोज रही थी, परंतु जानती न थी आश्रय कहाँ है और वह कैसा होगा। लक्ष्यहीन चलते चलते दिव्या और धात्री दूसरी बार वेश्याओं के मार्ग पर निकली। वहाँ मद्य और खाद्य के पणों पर अब भी पर्याप्त प्रकाश और कोलाहल था। भवनों के दूसरे खंडरों पर वेश्याओं के आलिंदों में जलते दीपों का प्रकाश मार्ग पर पड़ रहा था। उन दीपों के समीप प्रकाश मुख पर लिए पुष्पों से केश गूथे मुख और ओठ रंगे अनेक वेश्याएं बैठी थी। वे मार्ग पर आने जाने वाले पुरुषों का ध्यान संकेत से आकर्षित करती रहती थी। अनेक आलिंदों से वीणा वंशी और मुरज के स्वर सुनाई दे रहे थे। मार्ग पर भी वेश्याएं गले में पुष्पहार पहनने और ओठों पर तांबुल और नेत्रों में मद की लाली और मुख पर उद्दीपन और उन्माद का भाव लिए पुरुषों को आमंत्रित कर रही थी। अनेक अपने ग्राहकों के बाहु का आश्रय लिए मार्ग पर घूम रही थी। धाता ने दिव्या के कान के समीप मुख में ले जाकर कहा, वैश्याओं का स्थान है, यहाँ से शीघ्र चली चलो। संकोच अथवा आशंका प्रकट न कर दिव्या ने उत्तर दिया, अम्मा अधिक चला नहीं जाता, कहीं विश्राम करे। एक अपानक के समीप से जाते समय पान में रत किसी पुरुष ने उन्हें परिहास के संकेत से पुकारा। अपनी पुकार की उपेक्षा से उस पुरुष ने आगे बढ़ धाता के कंधों पर हाथ रखकर प्रश्न किया, मौसी, इतने उत्सुक रसिकों की अवज्ञा कर इस सुंदरी को किस भाग्यवान के प्रयोजन के लिए लिए जा रही हो? कुछ घड़ी पूर्व स्वीकारूढ़ रहने और रक्षार्थ स्वीका वाहकों की उपस्थिति होने पर भी दिव्या ने माताल विक्र की ललकार से आशंका अनुभव की थी। इस समय पथ पर निराश्रय होकर उसने धाता से पूर्व ही निशंक स्वर में उत्तर दिया, नागरिक, हम वेश्या नहीं हैं, हम विदेशी हैं, पांथशाला का मार्ग भूल गई हैं। इस मदब के पीछे और भी पुरुष मध्य के पण से उठाए। उसी समय समीप की वेदिका से निकली आई एक वृद्धा ने धाता दिव्या और मधुबों के बीच होकर दोनों बाहों फैलाकर विरोध में कहा, वाह कैसे भद्र हो तुम सांगल के नागरिकों, तुम कुल वधुओं और वेश्याओं के अंतर नहीं जानते। मदप ने परिचय के स्वर में वृद्धा को संबोधन किया, वाह मौसी जया, तुम बीच में क्यों बोलती हो? अरे मैं बीच में बोल रही हूँ, क्या कहते हो? युवक विस्मय से आहत होने के भाव से दोनों हाथों की हथेलियाँ दिखाकर वृद्धा ने कहा, मैं बीच में बोल रही हूँ, मेरी बहन की बिटिया वलका से आई है, उन्हें स्थान पर पहुँचाने जा रही हूँ। देखो तो इन्हें पांव चलने का अभ्यास कहाँ है, कैसी क्लांत और विस्री हो रही हैं। वृद्धा धाता की पीठ और दिव्या के सिर पर स्नेह से हाथ फेरने लगी। युवकों को संबोधन कर उसने कहा, तुम्हें वेश्याओं के यहाँ जाने का प्रयोजन है तो जाओ ना, वासा के यहाँ जाओ। उसके यहाँ दो नवीन पर्वती आई हैं, मद्य के प्रभाव से नेत्र क्यों मूंद रहे हो? चल चलो बेटी चलो। वृद्धा ने धाता और दिव्या को आगे बढ़ने का संकेत किया। कुछ पग आगे पथ के अंधकारपूर्ण भाग में पहुंचकर वृद्धा चिंतापूर्ण वात्सल्य के स्वर में बोली, हाय हाय, देखो तो कैसे दुष्ट पुरुष हैं, यदि मैं देख न लेती। चलते चलते बेटियों के पांव स्थिर हो गए, पथ भूल गई तो क्या, पंथशाला बहुत दूर है तो क्या, सूर्योदय होने पर पंथशाला पहुंचा आऊंगी। धाता ने दिव्या का बाहु छूकर संकेत किया। दिव्या ने उसके मुख की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि उठाई, परंतु अंधकार के कारण कुछ जान न पाई। वृद्धा कहती जा रही थी, देवताओं का दिया तुम्हारा अपना घर है, सृष्टि की भांति अट्टालिका न सही, परंतु विश्राम की योग्य स्थान, भोजन, वस्त्र सब कुछ है। मेरी भी तुम्हारे जैसी बेटी है। धाता के पांव में दासी के चिन्ह रूप लोहे का कड़ा पहचान कर वृद्धा ने उसे संबोधन किया, आहा, तुम्हारी स्वामिनी की कितनी अनुगत हो, तुम निश्चय ही पुण्यात्मा हो। धाता ने उत्तर दिया, मौसी तुम अत्यंत कृपालु हो, परंतु हम लोगों का पंथशाला पहुंचना आवश्यक है, परिजन प्रतीक्षा में उद्विग्न होंगे, परंतु अम्मा मैं अत्यंत श्रांत हूँ, चलना कठिन है। दिव्या बोल उठी। धाता ने पुनः उसकी बाँह दबाकर संकेत किया। अभिप्राय न समझकर दिव्या पुनः उसकी ओर मुख को देखने लगी। परिस्थिति भांप कर वृद्धा दिव्या के सिर पर हाथ रखकर करुण स्वर में बोली, हाय हाय, ठीक तो कहती है बेटी, इसकी अवस्था क्या चलने योग्य है? यदि ऐसा ही है तो घर में आधी खड़ी विश्राम भोजन करो, न होगा बिटिया को पालकी में पांथशाला पहुंचा दूंगी। हाँ, अभी विलंब भी क्या हुआ है और ऐसा दूर भी क्या है। धाता विवश मौन रह गई। वृद्धा कहती गई, और क्या, ऐसी संकट वेला में कुलवधू क्या अज्ञात पुरुषों से भरे पथ पर आ जाती है? बेटी, युवती को पुरुष से सदा आशंका है, इस वृद्धावस्था में भी निर्जन पथ पर पुरुष को देखकर मेरे रोम कांप जाते हैं। यह सांगल नगरी युवतियों के लिए बीहड़ वन से अधिक भयानक है, यहाँ के छलिया पुरुष नारी मांस के विकट आखेटक हैं। मैं तो जरा जीर्ण छीर्ण हो गई, अब अंधकार में पथ भी नहीं देख पाती। धाता और दिव्या के को लिए वृद्धा ने एक अधियारी वीथी पार कर एक जीर्ण साधारण भवन के सामने ठहर कर द्वार खटखटाया। कुछ क्षण में द्वार खुला, एक प्रौढ़ व्यक्ति दिखाई दिया। दिव्या और धाता सहित वृद्धा के प्रवेश कर लेने से दिव्या और धाता दोनों की ही पीठ पर भय की सिरहन दौड़ आई। ड्योढ़ी के सम्मुख आंगन और आंगन के आगे आलिंद और कोठे थे। कोठों के द्वार मुदे थे, आलिंद के एक कोने में दीपक जल रहा था, दूसरे कोने में छोटे पर्यक पर श्वेत बिस्तर बिछा था। पर्यक के समीप भूमि पर एक दास बालक शीत में सिमटा बैठा था। आंगन में पहुंचकर दीर्घ श्वास के साथ दिव्या के मन में प्रश्न उठा, विश्राम के लिए आश्रय पाया या बंधन? उसने धाता के नेत्रों की ओर देखा, वह भी उसे भय और आशंका दिखाई दी। प्रौढ़ गृहस्वामी की जिज्ञासा दृष्टि के उत्तर में वृद्धा ने कहा, देखो तो मेरे अपने पेट की बेटी जैसी यह भद्र युवती दासी सहित मार्ग भूल कर क्लेशित हो रही थी, देखकर मेरा हृदय उछलाया। माताल पुरुष भी कैसे होते हैं, अस्तु तुम इन्हें विश्राम के लिए आसन और क्षुधा निवृत्ति के लिए कुछ जलपान दो ना। प्रौढ़ पुरुष ने स्थिति जानकर हामी भरी और पर्यक के बिस्तर पर बैठाकर हाथों से ताली बजाई। समीप बैठा दास बालक का ध्यान आकर्षित होने पर प्रौढ़ ने भूमि पर बिछाने के संकेत से आसन और मुख की ओर हाथ कर खाद्य पदार्थ के लिए आदेश दिया। वृद्धा प्रौढ़ के सम्मुख भूमि पर अति निकट बैठ कर रहस्य के स्वर में उसने परामर्श करने लगी। कुछ क्षण पश्चात बालक कांख में चटाई और हाथ में काष्ठ का एक पात्र लिए लौटा। धाता ने बालक के हाथ से चटाई लेकर भूमि पर बिछा दी। दिव्या के बैठ जाने पर वह स्वयं समीप भूमि पर बैठ गई। दिव्या ने उसे हाथ से समीप चटाई खींचकर अपने शरीर से चिपटा लिया। बालक ने भूने अन्न से भरा काष्ठ का पात्र उनके सम्मुख रख दिया था। पात्र हाथ से हटाकर धाता ने बालक से जल मांगा। ध्यान वृद्धा की बात की ओर होने पर भी पौढ़ ने धाता की बात सुन पुनः बालक का ध्यान आकर्षित कर उंगुलियों से संकेत किया। बालक फिर आंगन के भीतरी द्वार से चला गया और क्षण भर पश्चात एक युवती के पीछे पीछे लौटा। युवती सुंदर थी, आयु में प्राय दिव्या की समवयस्का, वर्ण गोरा, कृष्ण दीर्घ नेत्र और मुख पर चपलता और अधिकार का भाव। उसके कंठ और बाहु पर स्वर्ण के आभूषण थे। शीत से बचने के लिए अर्घ ओढ़े थी। धाता और दिव्या की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि डालकर उसने पौढ़ की ओर देखा। युवती की जिज्ञासा के उत्तर में कुछ शब्द दुर्बोध भाषा में बोलकर पौढ़ ने शेष बात सुलभ भाषा में कही। अंजना, यह कुलवधु दासी सहित हमारी अतिथि हैं, इसके जलपान के लिए कुछ लाओ। युवती अनुमति में गिरवा झुकाकर पुनः आगंतुकों की ओर देखती हुई चली गई। शीघ्र ही वह बालक के एक हाथ में कासे के एक पात्र में भुना हुआ मांस और दूसरे हाथ में सुरा का कुतुब और पान पात्र लिए उपस्थित हुई। युवती दोनों वस्तुएं दिव्या के सम्मुख रखकर बोली, भद्रे, इस समय केवल यही शेष है, किंचित आहार और पान से शांति दूर होगी। दिव्या के आहार के लिए अनिच्छा प्रकट करने पर धाता ने युवती से जल के लिए अनुरोध किया। युवती के संकेत से बालक पीतल के एक पात्र में जल ले आया। अभ्यास न होने के कारण दिव्या ने भारी पात्र को तनिक असुविधा से थाम कर यथेष्ट जल पिया और शीत से कांप गई। दिव्या को कुछ आहार न लेते देखकर वृद्धा ने आत्मीयता से आग्रह किया, बेटी, कुछ तो खाओ ना, यह मांस अत्यंत कोमल और स्वादु है, आशो अत्यंत उत्तम है, इसके सेवन से मन स्वस्थ होगा। बेटी, संकोच न करो, तुम्हारा अपना ही घर है। वृद्धा कुछ समय तक दुर्बोध भाषा में पौड़ से बात करती रही। उसका स्वर वैज्ञता के कारण ऊंचा हो गया। पर्यक की पार्टी का आश्रय लेकर वह असंतोष के भाव से उठ खड़ी हुई और बड़बड़ाती हुई द्वार की ओर चल दी। पौढ़ भी उठा, वह वृद्धा को संतावना दे रहा था। कटी पर अंतर्वाहक की लपेट में से निकालकर उसने एक स्वर्ण मुद्रा वृद्धा के हाथ में दे दी। वृद्धा ने असंतोष में हाथ झटक दिया। कुटी हुई भूमि पर मुद्रा के गिरने की झंकार हुई। गिरी हुई मुद्रा उठाकर पुनः वृद्धा के हाथ में थमाकर पौढ़ दुर्बोध भाषा में उसे संतावना देते हुए वृद्धा को द्वार की ओर चला। वृद्धा के लिए उसने द्वार का ताला खोलकर मार्ग दिया और पुनः ताला लगाकर चाबी को कटी पर अपने अंतर्वासक की लपेट में खोसकर आंगन के द्वार से दूसरी ओर चला गया। शीत में सिमटा हुआ दास बालक आलिंद के स्तंभ से पीठ लगाए अपने दोनों दुर्बल काले जानुओं को बाहू में लपेटे उन पर ठोड़ी टिकाए निरंतर उन दोनों की ओर देख रहा था। दृष्टि दूसरी ओर होने पर भी दिव्या को निरंतर ताला लगा द्वार दिखाई दे रहा था। वह बंधन और विवस्था अनुभव कर रही थी। धाता ने उसके कान के सम्मुख मुख ले जाकर अत्यंत धीमे स्वर में कहा, भद्रे, सदगृहस्थ का निवास नहीं जान पड़ता, जो भी हो। दीर्घ निश्वास से दिव्या ने उत्तर दिया, उपाय क्या है। अपना सिर उसने धाता के कंधों से लगा दिया। आंगन की कुटी हुई भूमि गोबर से लीपी थी, भित्तियां नीलापन लिए श्वेत मिट्टी से। आलिंद में दीपाधार पर जलते दीप से आंगन की भूमि पर धीमा प्रकाश पड़ रहा था। भित्तियां आधी ऊंचाई तक प्रकाशित थी। ऊपर का भाग अंधकार में विलीन हो जाने से अंधकारमय आकाश में जा मिला था। नेत्र प्रकाश में रहने के कारण खुले आकाश का अंधकार और निविड जान पड़ रहा था। शीत में जमे वाष्प से भरे आकाश में तारे गहरे कुएं की तलहटी में हिलते जल की भांति झिलमिला रहे थे। दिव्या और धाता चीरकाल तक मौन बैठी रहीं, अपने आप को अंधकूप में बंदी की भांति निसहाय और परवश अनुभव करने लगी। मन की क्षुब्ध स्थिति में दिव्या और धाता को आकाश के चीर परिचित नक्षत्र भी अपरिचित और विचित्र जान पड़ रहे थे। दिव्या कुछ पल आकाश की ओर देखती और फिर जानू पर चिबुक टिकाकर सोचने लगती, कहाँ आ गई, आगे क्या होगा। प्रपितामह के प्रसाद में सब कुछ था, परंतु वहाँ पर अपराधिनी और कलंकनी बन गई। यदि वह अपराधिनी और कलंकनी न बने तो वह भृत्या दासी सभी कुछ बनने और सहने के लिए प्रस्तुत है। वह माता बन रही है, माता बन सके। दिव्या को कल्पना में तात का प्रसाद दिखाई देने लगा। धित शर्मा की पत्नी आर्य मोक्षा के प्रथम गर्भ प्रसव के उपलक्ष्य में संपूर्ण प्रसाद उल्लास से गूंज उठा और वह स्वयं उसी अपराध के कारण निराश्रय होकर गर्भ रक्षा के लिए भाग रही है। उसने एक दीर्घ निश्वास लिए। हाय वंचक पृथसेन, सुख और गर्भ का कारण गर्भ कलंक और अमार्जनीय अपराध बन गया। कल्पना में रुच्छ और गंभीर रुद्रधीर भी दिखाई दिया और अभद्र चार्वाक मारिस भी। मारिस की वह स्थिति स्मरण हो आई। भद्रे, तुम्हारी कला तुम्हारी आकर्षण शक्ति का निखार मात्र है, जो नारी में सृष्टि की आदि शक्ति है। दिव्या का मन कटुता से भर गया। नारी के उस आकर्षण में, नारी में निहित सृष्टि की शक्ति में उसके लिए कितना अभिशाप अंतर्निहित है। इस सब के लिए वह कब प्रस्तुत थी, परंतु देव की इच्छा ऐसी ही थी। पौढ़ आंगन के भीतरी द्वार से लौटा, युवती उसके पीछे थी। बेटी, यहाँ शीत में कष्ट होगा। पौढ़ ने दिव्या को संबोधन किया तथा हाथ बढ़ाकर कहा, लाओ यह तुम्हारे आभूषण सुरक्षित रख दूँ। दिव्या के नेत्र पौढ़ की ओर उठे। धाता ने भी उस ओर देखा। मुख से कुछ न कह कंठ की मुक्तमालाएँ उतार कर पौढ़ के हाथ में दे दी। पौढ़ के साथ खड़ी युवती अपना कौतूहल वश में न कर सकी। उसने मालाएँ पौढ़ के हाथ से झपट कर ले ली और विस्मय से नेत्र फैलाकर उन्हें दीपक के समीप ले जाकर देखने लगी। पौढ़ ने उस ओर ध्यान न देकर दिव्या के बहुमूल्य की ओर संकेत कर कहा, बेटी यह अंगद भी। दिव्या ने अपने बाहु धाता की ओर बढ़ा दिए। धाता ने विवशता से कांपती अंगुलियों से रत्न जड़ित अंगद के बंधन खोलकर अंगद भी पौढ़ के फैले हुए हाथ पर रख दिया। युवती ने यह भी झपट लिया। पौढ़ ने अपनी बात दोहराई, बेटी यहाँ आकाश के तले शीत में भूमि पर कष्ट होगा, आओ कक्ष में विश्राम करो। दिव्या और धाता पौढ़ के संकेत से उठकर पीछे पीछे आंगन के द्वार पर चली। दिव्या और धाता एक अधिक विस्तृत आंगन में पहुंची। आंगन के चारों ओर अनेक कच्छों के मुदे हुए कपाट भित्तियों में दिखाई दे रहे थे। दक्षिण के कोने की ओर एक प्रकाशित कक्ष के अतिरिक्त सब और गहर अंधकार था। पौढ़ इसी दिशा में धाता और दिव्या को के आगे आगे चला। कक्ष का द्वार खुला था। प्रकाशित कक्ष के समीप द्वार के बाहर एक व्यक्ति पहरी के से मलिन वेश में, कमर में खड्ग और हाथ में कुड़ा लिए खड़ा था। तीन पुरुष कक्ष से निकले। जीर्ण मलिन और अपर्याप्त वस्त्रों में शीत से सिमटते हुए दास से जान पड़ते थे। पहरी उन तीनों को दूसरी ओर ले गया। मूक बालक कांख में चटाई लिए और हाथों में दीपक संभाले सैन्य सैन्य उनके पीछे चला आ रहा था। पौढ़ के संकेत से बालक ने दीपक कक्ष के कोने में रखकर चटाई भूमि पर बिछा दी। वृद्धा ने दिव्या की पीठ पर हाथ रखकर उसे भीतर जाने का संकेत किया, बेटी यहाँ शीत से कष्ट न होगा, विश्राम करो। धाता भी कक्ष में जा रही थी, परंतु पौढ़ ने अपने बाहु से द्वार रोक कर कहा, तुम्हारे लिए अन्यत्र स्थान है। दिव्या ने बिलख कर प्रार्थना की, अम्मा को यहीं आने दो। परंतु कक्ष के द्वार बंद हो गए। दिव्या ने बाहर द्वार पर ताला लगा देने का शब्द सुना। कक्ष में दिव्या और बाहर धाता के कंठों में चित्कार उठा, परंतु स्वयं ही उसकी व्यर्थता अनुभव हो जाने से वह निःशब्द श्वास में बह गया। उसे कौन सुनता। दोनों के नेत्रों से विवशता के अश्रु बहते रहे।